लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र बच्चों और विशेष रूप से पीड़ित बच्चों के भविष्य को प्राथमिकता देने हेतु आवश्यक उपाय करे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण विषय हैं सामायिक लोकोपकारी चर्चा, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। 2019 का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 का आयोजन चिल्ली में होने वाला था, परंतु देश में बढ़ते हुए विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए सरकार ने असमर्थता जताई। इस कारण से स्पेन की राजधानी मैड्रिड में यह सम्मेलन 2 दिसंबर को शुरू हुआ, जो 13 दिसंबर तक चलेगा। 2 हफ्तों तक चलने वाले इस सम्मेलन में जलवायु संकट के विभिन्न पहलुओं से निपटने पर विमर्श होगा, जिनमें क्षमता निर्माण, वन उन्मूलन, आदिवासी समुदाय, शहर, वित्तीय संसाधन, तकनीक सहित अन्य आयाम शामिल हैं। वर्ष 2015 के पेरिस समझौते में 2020 की एक समय सीमा तय की गई है। वर्ष 2020 से पहले होने वाला यह अंतिम सम्मेलन है। इस शिखर वार्ता में कई देशों और सेक्टरों के नेता शामिल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने सत्र के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए दोहराया कि महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई के लिए मजबूत राजनैतिक इच्छा शक्ति दर्शाए जाने के साथ साथ कार्बन की कीमत तय किए जाने की जरूरत है। तमाम व्यवसायों और सिविल सोसाइटी का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि वो सरकारों पर ऐसी बेहतर नीतियां बनाने के लिए दबाव डालें जिनके जरिए जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने में निजी क्षेत्र के प्रयासों को भी सहारा दिया जा सके। आइए सुनते हैं इसी पर विस्तार से।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने कहा है कि हरित अर्थव्यवस्था से डरने के बजाय उसे खुलकर अपनाया जाना चाहिए। यूएन प्रमुख ने सोमवार को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में वार्षिक यूएन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP25 के पहले दिन प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए दोहराया कि महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति दर्शाए जाने के साथ साथ कार्बन की कीमत तय किए जाने की जरूरत है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
यूएन प्रमुख के मुताबिक इस सम्मेलन से ये संदेश दिया जाना चाहिए कि रास्ता बदलने के लिए मजबूत संकल्प है और कि दुनिया प्रकृति के खिलाफ युद्ध को रोकने के लिए संकल्पित है। साथ ही वर्ष 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी यानी नेट कार्बन उत्सर्जन शून्य को पाने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति भी दुनिया के पास है। महासचिव का कहना है कि सितंबर 2019 में यूएन जलवायु शिखर वार्ता से उत्साहजनक प्रगति के संकेत मिले हैं। उस दौरान करीब 70 देशों ने अपने राष्ट्रीय संकल्पों को वर्ष 2020 तक और ज्यादा मजबूत बनाने की इच्छा जाहिर की है। 65 देश और प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं वर्ष 2050 तक नेट कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का प्रयास करेंगी। साथ ही सरकारों और निवेशकों ने जीवाश्म ईंधनों से हाथ खींचने के संकेत दिए हैं। यूएन प्रमुख ने जलवायु परिवर्तन पर नेताओं से मतभेदों को दूर करने और कार्बन की कीमत तय करने पर सहमति बनाने की पुकार लगाई है। मौजूदा हालात और रुझानों से भविष्य में एक बड़े संकट की आशंका गहरा रही है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सघनता की तुलना 30 से 50 लाख वर्ष पहले के स्तर से की जा सकती है, जब धरती का औसत तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था और समुद्री जल स्तर 10 से 20 मीटर ऊंचा था। पिछले 5 वर्ष इतिहास के सबसे ज्यादा गर्म साल साबित हुए हैं। ग्लेशियरों का तेज गति से पिघलना जारी है, समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है और महासागरों में अम्ल की मात्रा बढ़ रही है, जिससे समुद्री जीवन को खतरा पैदा हो गया है। लेकिन गहराते संकट के बीच कोयला संयंत्रों की योजनाएं अब भी बन रही हैं। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस।
In several regions of the world, coal power plants continue to be planned and built in large numbers.
دنیا کے کئی دیشوں میں کوئلے سے چلنے والے ارجا سنیتروں کی یوجنائیں بھی بن رہی ہیں اور بڑی سنکھیا میں ان کا نرمان ہو رہا ہے۔ یا تو ہمیں کوئلے کی اس لت پر قابو پانا ہوگا یا پھر جلوایو پریورتن سے نپٹنے کے ہمارے سبھی پریاس ویرتھ ہو جائیں گے۔ یو این پرمکھ انتونیو گوٹیریش کے شبد۔ COP25 بیٹھک کے ساتھ ہی اگلے 12 مہینوں تک چلنے والی پرکریا کی شروعات ہوگی، جس کے تحت نیشنلی ڈیٹرمائنڈ کنٹریبیوشنز یعنی راشٹریہ جلوایو سنکلپوں کی سمیکشا کی جائے گی۔
ہر سال 1 دسمبر کو وشو ایڈز دیوس منایا جاتا ہے۔ اس ورش اس موقع پر ایچ آئی وی ایڈز کے خلاف لڑائی میں سنیکت راشٹر کے پریاسوں کی اگوائی کر رہی ایجنسی یو این ایڈز نے ایک رپورٹ جاری کی جس کا نام ہے لوگوں کو سشکت بنانا۔ ایجنسی یو این ایڈز نے کہا ہے کہ ایچ آئی وی کے سنکرمت لوگوں کو جب ان کی خود کی دیکھ بھال کرنے کے پریاسوں میں سکریہ بھاگیداری کرنے کا موقع ملتا ہے تو سنکرمن کے نئے معاملے کم ہوتے ہیں، اور ایسی استھتی میں زیادہ سنکھیا میں سنکرمت لوگوں کو علاج کی سویدھا حاصل ہوتی ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ جب لوگوں کو اپنی پسند نردھارت کرنے اور ساتھ مل جل کر کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں، انیائے ہونے سے روکا جا سکتا ہے اور لوگوں کا سمان و پرتشٹھا بحال کی جاتی ہے۔ اس رپورٹ کے بارے میں یو این سنواد داتا انجو شرما نے بھارت دلی میں یو این ایڈز کاریالے کے ورشٹھ سلاحکار نندینی کپور سے خاص بات چیت کی۔ تو آئیے سنتے ہیں بھارت کے لیے کیے گئے ایچ آئی وی ایڈز کو روکنے کے پریاس کو۔
ورلڈ ایڈز ڈے سے ٹھیک پہلے یو این ایڈز نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، اس رپورٹ کی کیا پرمکھ باتیں ہیں؟
ورلڈ ایڈز ڈے کے پہلے جو رپورٹ یو این ایڈز نے جاری کی ہے، اس بار جو اس کا فوکس رہا ہے وہ ہے پاور ٹو دا پیپل، اور وہ جاتا ہے اس سال کی تھیم کے ساتھ جو ہے کمیونٹیز میک دا ڈفرنس۔ اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے کمیونٹیز نے ایچ آئی وی ایپیڈیمک کو بہت بدلاؤ پورے وشو میں ان کی وجہ سے آیا ہے۔ انڈیا میں خاص کر کے جیسے دیکھا کہ ہم نے کمیونٹیز کی انوالومنٹ کی وجہ سے بہت جگہوں پہ جیت حاصل کی ہے، اور وہی ابھی ہم کام اور آگے بڑھا رہے ہیں، کیونکہ جو ہمیں لاسٹ مائل کرنی ہے وہ کمیونٹیز کے ساتھ ہی ہم اچیو کر سکتے ہیں۔
تو اس رپورٹ میں انڈیا کے بارے میں، بھارت میں جو یہ سنکرمن ہے اس کے بارے میں کیا خاص باتیں ہیں؟
انڈیا کے بارے میں اس رپورٹ میں یہ ہے کہ انڈیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں بہت ہم نے ایڈوانسمنٹ کری ہے ایچ آئی وی ریسپانس میں۔ تو 21 لاکھ لوگ ایچ آئی وی سے جیوت ہیں انڈیا میں۔ پریونشن اور ٹریٹمنٹ پروگرام دونوں بہت اسٹرینتھن کرے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں، اور وہ دونوں پروگرام سرکار اور کمیونٹیز کی انوالومنٹ کے ساتھ ہی پہنچے ہیں جہاں پہنچے ہیں۔
تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ بچاؤ کے لیے کام کرنا بہت ضروری ہے، تو بچاؤ کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے کیا قدم اٹھا سکتے ہیں؟
پریونشن جس کو ہم بولتے ہیں، روک تھام کے لیے، کیونکہ اگر ہم انڈیا کا ایگزامپل لیں تو انڈیا میں جو ایچ آئی وی ہے وہ زیادہ تر کی پاپولیشنز کے ساتھ ہے، اور کی پاپولیشن میں 4 گروپس آتے ہیں: مین ہو ہیو سیکس ود مین، سیکس ورکرز، پیپل ہو یوز ڈرگس اینڈ ٹرانسجینڈرز۔ تو یہ کانسنٹریٹڈ ایپیڈیمک ہے، تو ہمیں ان 4 پاپولیشنز کے ساتھ بہت مل کر کام کرنا ہے کہ ان پاپولیشنز میں نئے انفیکشنز نہ ہوں۔ وہ کام پچھلے 10 سالوں میں اور اس سے زیادہ میں بہت زور سے کرا گیا ہے، مگر اب ہم اس پوائنٹ پہ پہنچے ہیں جہاں پہ جو پرانی اسٹریٹجیز تھیں، جہاں پہ ہم لوگوں کو میسیجز دیتے تھے، وہ والی اسٹریٹجیز اب نہیں چلتی ہیں۔ اس لیے کیونکہ اب سوشل میڈیا کا یوز بہت ہے، تو اب جب ہم شفٹ کر رہے ہیں اسٹریٹجیز، اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو لوگوں تک میسج پہنچانے کے لیے جو وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، جو ہے سوشل میڈیا، موبائل فون، اس کے تھرو ہم کیسے ان کو پریونشن میسیجز پہنچا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ جو پریونشن پیکج ہوتا ہے، جس میں دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں، جس طریقے سے کانڈمز اور بھی اب نئی چیزیں اسٹریٹجی میں انکلوڈ کری جا رہی ہیں، جیسے کہ پریپ از پری ایکسپوژر پروفلیکسز۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو انسان جس کا رسکی بیہیویئر ہو، اگر وہ پریپ لیں تو وہ ایچ آئی وی ان کو ٹرانسمٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت نئی اسٹریٹجی ہے، دوسرے دیشوں میں آلریڈی استعمال کری جا رہی ہے، انڈیا اسی راستے پہ چلنے کی سوچ رہے ہیں۔
آج کے سبھی وشے سنیکت راشٹر سنگھ ریڈیو دوارا تیار کیے گئے تھے، جنہیں پرستت کر رہے تھے محبوب خان۔ और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वेटिकन में ख्रिस्त जयंती महापर्व के उपलक्ष्य में संगीत समारोह के लिए उपस्थित कलाकारों से मुलाकात के अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि गौशाला हमें विनम्रता और अन्यों के साथ साझेदारी के लिए आमंत्रित करता है। कैथलिक शिक्षा संबंधी परम धर्म पीठी परिषद के सौजन्य से आयोजित संगीत समारोह के कलाकारों का अभिवादन करते हुए संत पापा ने येसु ख्रीस्त की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित की तथा स्मरण दिलाया कि येसु ने विनम्र बनकर एक गौशाले में जन्म लिया था। उन्होंने कहा कि ईश पुत्र होते हुए भी येसु ने अपने देह धारण के लिए एक विनीत गौशाले को चुना, जो हम सब के लिए जीवन का सबक होना चाहिए कि हम भी विनम्र बनकर उन लोगों की मदद करें जो हाशिए पर जीवन यापन के लिए बाध्य हैं। संत पापा ने कहा कि इस वर्ष उन्होंने ख्रीस्त जयंती महापर्व के उपलक्ष्य में संत फ्रांसिस असीसी द्वारा 13वीं शताब्दी में निर्मित गौशाले को आदर्श माना है। इन्हीं संत के पद चिन्हों पर चलकर हम सर्व साधारणता को अपनाएं तथा ईश पुत्र के देह धारण के रहस्य पर मनन चिंतन करें। उन्होंने कहा, गौशाले की चरनी से यह संदेश स्पष्ट रूप से उभरता है कि हम खुद को धन और खुशहाली के माया मोह द्वारा धोखा नहीं दे सकते। संत पापा ने कहा कि गौशाले में जन्म लेकर ईश्वर खुद एक अद्वितीय और यथार्थ क्रांति का शुभारंभ करते हैं, जो जरूरतमंदों को आशा और प्रतिष्ठा प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि ईश्वर द्वारा आरंभ यह क्रांति प्रेम और साझेदारी की क्रांति है, जिसे आत्मसात कर हम भी विश्व को सबके लिए एक बेहतर स्थल बना सकते हैं। वेटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजाघर में गुरुवार को ग्वादालुपे की मां मरियम के महापर्व के उपलक्ष्य में ख्रीस्त त्याग अर्पित कर संत पापा फ्रांसिस ने मरियम को महिला, मां और संदेश वाहिका की संज्ञाओं से विभूषित किया। उन्होंने कहा कि मरियम महिला और मां होने के साथ साथ संदेश वाहक हैं और ये तीन विशेषण उनका सार है। रोम के लातिनी अमरीकी समुदाय के सदस्यों ने संत पापा के साथ ग्वादालुपे की मरियम के आदर में अर्पित ख्रीस्त त्याग समारोह में भाग लिया। संत पापा ने कहा, ग्वादालुपे की मरियम के महापर्व के लिए निर्धारित धर्म विधि मरियम के लिए तीन विशेषणों का सुझाव रखती है और ये तीन विशेषण अर्थात मां, महिला और संदेश वाहक मरियम के जीवन का सार है। उन्होंने कहा, मरियम सर्वोत्कृष्ट महिला है, विशेष रूप से इसलिए कि वे अपने पुत्र की शिष्या हैं तथा उनके संदेश की वाहिका। उन्होंने कहा, यह एक सीधी सी बात है, हालांकि सदियों के अंतराल में ख्रिस्तानुयायियों ने कई प्रेमपूर्ण उपाधियों से मरियम की वंदना की है, तथापि मरियम का वर्णन करने के लिए इनसे उपयुक्त शीर्षक और नहीं हो सकते। मरियम विनम्र है, मरियम अपने गुरु, पुत्र और एकमात्र मुक्तिदाता येसु के प्रति सत्य निष्ठ है। संत पापा ने कहा कि मरियम ने अपने पुत्र से कुछ नहीं लिया, क्योंकि वे उनकी माँ हैं और इस प्रकार वे अपने लोगों और उनके हृदयों की माँ हैं। मरियम केवल कलीसिया की माँ ही नहीं अपितु वे कलीसिया की छवि भी हैं। अस्तु जो कुछ मरियम के लिए कहा जा सकता है वह सब कलीसिया पर भी लागू होता है जिसकी प्रकृति स्त्रीलिंग है। उन्होंने कहा कि इन्हीं अर्थों में हम कलीसिया को माता कलीसिया कहकर पुकारते हैं। ओस्लो में मानव विरोधी सुरंगों पर संपन्न संविदा के पुनरावलोकन हेतु विगत माह आयोजित चौथे सम्मेलन को एक संदेश प्रेषित कर संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि उक्त संविदा जीवन की संस्कृति की विजय है। संत पापा ने कहा कि संविदा पर 22 वर्षों पूर्व ओस्लो सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे किंतु जब से अब तक यह शांति का महत्वपूर्ण अस्त्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक परिवार रूप में एकत्रित करने में एक उत्प्रेरक सिद्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि मानव विरोधी सुरंगों पर संपन्न संविदा इसलिए भी सफल रही है क्योंकि यह राजनैतिक आर्थिक और वैचारिक हितों द्वारा निर्देशित नहीं थी अपितु मानव व्यक्ति और मानव जीवन के प्रति हमारी चिंताओं एवं साझा जिम्मेदारी के कारण यह नैतिक अनिवार्यता से ओतप्रोत रही है। संत पापा ने कहा मानव विरोधी सुरंगों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोगों के लिए ओस्लो संविदा जीवन की संस्कृति की विजय तथा भय और मृत्यु पर शांति की विजय का संकेत है। उन्होंने कहा प्रत्येक मानव व्यक्ति शांति की तलाश में रहता है जो कि भय के विरुद्ध है। संघर्ष लोगों और राष्ट्रों के बीच व्याप्त बंधनों को तोड़ देता है तथा निर्दोष नागरिकों को अपना शिकार बनाता है। विशेष रूप से मानव विरोधी सुरंगें जीवन और जीने के साधनों को नष्ट करती तथा बच्चों सहित कई लोगों को आजीवन विकलांग बना देती हैं। ये सुरंगें लोगों के बीच पुनर्मिलन शांति और अखंड विकास को अवरुद्ध करती हैं। 2025 तक विश्व को मानव विरोधी सुरंगों से स्वतंत्र करने के लक्ष्य के संदर्भ में संत पापा फ्रांसिस ने स्मरण दिलाया कि अभी भी विश्व के कई क्षेत्रों में अनेकानेक लोग मानव विरोधी सुरंगों के शिकार हो रहे हैं तथा हजारों एकड़ भूमि पर ये सुरंगें बिछी हुई हैं जो जन जीवन को अवरुद्ध कर रही हैं तथा लोगों और समुदायों की रोजमर्रा की जिंदगी को तहस नहस कर रही हैं। वेटिकन में 11 और 12 दिसंबर को धर्म एवं चिकित्सा नैतिकता विषय पर संपन्न एक अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में उप शामक देखभाल और वयोवृद्धों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया गया। वेटिकन स्थित जीवन संबंधी परम धर्म पीठी अकादमी तथा कटर के स्वास्थ्य संबंधी विश्व नवाचार शिखर सम्मेलन विश्व के तत्वाधान में इस विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था। बुधवार और गुरुवार को संपन्न विचार गोष्ठी में चिकित्सा नैतिकता के संदर्भ में वयोवृद्धों को समग्र देखभाल प्रदान करने हेतु धर्म की भूमिका का परीक्षण किया गया। कनाडा से रोम पहुंचे केबेक के कैथोलिक धर्माध्यक्ष नोएल सिमार्ट ने वयोवृद्धों के मानसिक स्वास्थ्य तथा इन्हें उपयुक्त उपचार प्रदान करने के प्रति ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने वेटिकन न्यूज से बातचीत में आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में वृद्ध रोगियों के जीवन की गुणवत्ता को संवर्धित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा हमें आध्यात्मिक रूप से इन लोगों का साथ देना होगा तथा इन्हें एहसास दिलाना होगा कि अपनी रोगावस्था के बावजूद वे समाज के लिए उपयोगी हैं, समाज का अभिन्न अंग है, वे बेकार नहीं हैं, वे शक्ति विहीन नहीं हैं, इसलिए कि हम उनके जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम मानसिक रोगों के शिकार लोगों के जीवन में आशा और ज्योति लाते हैं तो हम प्रेम शांति और करुणा का वातावरण बना रहे हैं। धर्माध्यक्ष सिमर्त ने कहा रिश्तों का जाल बुनना बहुत महत्वपूर्ण है और एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना जहां रोगी लोग तथा बुजुर्ग अपने आप को अकेला महसूस न करें। और इसी के साथ वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।